તારીખ 29/4/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 674 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 474
કે જગત મેં એસા ભી અભિપ્રાય હૈ કે દેહ છૂટ જાય તો મોક્ષ હોતા હૈ જ્યાં તક યે દેહ રહેતા હૈ વહાં તક જીવ કા મોક્ષ નહીં હોતા તો કહેતે કે નહીં અરિહંત અવસ્થા મેં સદેહ મુક્તિ હૈ દેહ સહિત મુક્ત દિશા મેં વો વિચરતે હૈ એસા ભી બનતા હૈ એસે મહાપુરુષો કો ત્રિકાલ નમસ્કાર ભૂતકાલ મેં ભી મેરા નમસ્કાર વર્તમાન મેં ભી મેરા નમસ્કાર ઓર ભવિષ્ય મેં ભી મેરા નમસ્કાર તીનો કાલ મેં મેરા નમસ્કાર હો એસે ઉસ દશા કે અભિલાષી જીવ કો ઇસ પ્રકાર કી ભાવના આતી હૈ કૃપાળુ દેવ કો ભી અભિલાષા થી ઉસ ભાવના ઉસ દશા કી સૌભાગ પ્રતિ શ્રી સાયલા ઉનકે જો પરમ નિકટવાસી મોક્ષુ થે ઉનકો યે પત્ર લિખ રહે હૈ ઓર ઉનકે એક પ્રશ્ન કે પ્રત્યુત્તર મેં વો પત્ર લિખ રહે હૈ સૌરભ કષાય કા અભાવ દેહધારી હોને પર ભી પરમ જ્ઞાની પુરુષ કે પુરુષ મેં બનતા હૈ ઇસ પ્રકાર સે હમને લિખા લિખા થા યહ પ્રસંગ મેં અભાવ શબ્દ કા અર્થ ક્ષય ગિન કરકે લિખા હૈ આગે પત્ર મેં કોઈ એસી બાત લિખી હૈ કે સર્વ કષાય કા અભાવ દેહધારી પરમાત્મા કો હોતા હૈ અરિયંત સર્વજ્ઞ જિનેન્દ્ર પરમાત્મા કો હોતા હૈ ઉસકો દેહ હૈ લેકિન કોઈ કષાય નહીં હૈ ઓર કોઈ કષાય વાલી પ્રવૃત્તિ ભી નહીં હૈ આહાર નિહાર નિંદ્રા કુછ નહીં હૈ કોઈ પરિગ્રહ ભી નહીં હૈ વાણી હૈ ઓર વિહાર હૈ યે દો બાત શરીર કી હોતી હૈ ઓર વચન કી હોતી હૈ કાય કી ઓર વચન કી હોતી હૈ તો ભી બિના ઈચ્છા હોતી હૈ બિના રાગ હોતી હૈ ઉસમેં રાગ કા કોઈ નિમિત્ત નહીં હોતા સ્વયં હોતી હૈ વાણી સ્વયં પેદા હોતી હૈ ઓર વિહાર હોતા હૈ તો સ્વતઃ હી હોતા હૈ વો વિકલ્પ નહીં હોતા હૈ કે ઇધર સે ઉધર જાના હૈ એસે હી હો જાતા હૈ સર્વ કષાય કા અભાવ દેહધારી હોને પર ભી પરમ જ્ઞાની પુરુષ મેં બનતા હૈ ઇસ પ્રકાર કા ઇસ પ્રકાર સે હમને લિખા હૈ લિખા વો પ્રસંગ મેં મતલબ ઉસ પત્ર મેં અભાવ શબ્દ કા અર્થ ક્ષય ગિન કરકે લિખા હૈ સર્વ કષાય કા ક્ષય હો ગયા હૈ ઉપશમ નહીં હુઆ હૈ ક્ષયોપશમ ભી નહીં હુઆ હૈ ક્ષય હો ગયા હૈ તીન પ્રકાર કે કષાય કી અવસ્થા હોતી હૈ ઉપશમ ક્ષયોપશમ ઓર ક્ષાયક તો ઉપશમ હોતી હૈ વહાં નિર્મલતા તો હોતી હૈ લેકિન વો કષાય દબી હુઈ સત્તા મેં રહેતી હૈ યોગ્યતા કે રૂપ મેં ક્ષયોપશમ મેં કુછ કષાય હોતી હૈ કુછ કષાય કા અભાવ હોતા હૈ ક્ષય ઓર ઉપશમ દોનો હૈ ઉસમેં ઇસકો ક્ષયોપશમ કહેતે હૈ ઓર ક્ષય હોને સે અભાવ હો જાતા હૈ મૂલ મેં સે કોઈ યોગ્યતા નહીં રહેતી ઓર કભી દુબારા ઉસકા ઉત્પન્ન હોને કા પ્રસંગ ભી અવસર ભી નહીં બનતા ઉસકો કહેતે હૈ ક્ષય જલ જાના ક્ષય હો જાના નાશ હો જાના જગતવાસી જીવ કો રાગ દ્વેષ ગયે હૈ ચલ ગયે હૈ બીત ગયે હૈ અભાવ હો ગયે હૈ ઉસકી ખબર પડે નહીં જગતવાસી જીવ કો મેને સામાન્ય આમ મનુષ્ય કો આમ જનતા કો દૂસરે જીવ મેં રાગ દ્વેષ ચલા ગયા હૈ ઉસકી ખબર પડતી નહીં હૈ પરંતુ જો બડે પુરુષ હૈ મોટા પુરુષ મેને મહાપુરુષ હૈ જ્ઞાની પુરુષ હૈ મહાપુરુષ મને જ્ઞાની પુરુષ હૈ वो जानते हैं कि यह महात्मा पुरुष को, यह महात्मा पुरुष में राग द्वेष का अभाव और उपशम वर्तता है। महात्मा पुरुष को मालूम पड़ता है कि ये दूसरे महात्मा पुरुष में भी राग द्वेष का अभाव हो गया है या उसको उपशम हो गया है, ऐसा दूसरे को, महापुरुष को, ज्ञानी पुरुष को पता चल जाता है। ऐसा लिख करके आपने शंका की, किसने, सौभाग्य भाई ने ऐसा लिख करके शंका की, यानी वो बात तो वो जानते थे, लोग ज्ञानी को, वितराग को पहचानते नहीं है, ज्ञानी हो ज्ञानी को पहचानते हैं, वितराग को पहचानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, एक शंका, शंका का एक प्रकार, आशंका का एक प्रकार यहाँ प्रस्तुत किया है। अब इसके पीछे थोड़ा स्पष्टीकरण करें कि ये जो राग द्वेष का अभाव होता है, यानी मलिन परिणाम का अभाव होता है और शुद्ध पवित्र परिणाम होता है। तो मलिन परिणाम है वो स्थूल है और जो शुद्ध परिणाम है वो सूक्ष्म है। स्थूल सूक्ष्म के बहुत भेद है, मलिनता में भी है और शुद्धता में भी है। जैसे मलिनता में विचार करें तो किसी को मन में कोई मलिन परिणाम होता है तो सूक्ष्म रहता है, पता नहीं चलता है दूसरे को कि इसके मन में क्या चलता है, लेकिन वो मलिन परिणाम अनुसार कोई प्रवृत्ति कर लेता है तो दूसरे को पता चलता है कि इसका भाव भी मलिन है तो उसकी प्रवृत्ति भी मलिन है। जैसे चोरी का भाव हुआ, लेकिन चोरी नहीं किया तो दूसरे को पता नहीं चलता है, पड़ता है, और चोरी करता है तो पता चलता है कि उसका चोरी करने का भाव है तो चोरी करता है। गुस्सा होता है, मन में गुस्सा होता है तो दूसरे को क्रोध का पता नहीं चलता है, लेकिन वो बोलने लगता है, हाव भाव आता है, मारने लगता है, मार डालता है, खून कर देता है, तो उसका जैसा जैसा तीव्र अशुद्धता आती है तो स्थूलता भी अधिक हो जाती है। मलिन परिणामों में भी तीव्र अशुद्धता होवे तो स्थूलता बढ़ जाती है और मंद अशुद्धता होवे तो स्थूलता कम होती है, लेकिन ये सब स्थूलता का एक भेद है। ऐसे शुद्ध परिणाम में, ऐसे शुद्ध परिणाम में मुमुक्षुता में निर्मलता आती है, वो थोड़ी स्थूल होती है। ज्ञानी को जो शुद्धता होती है इससे सूक्ष्म होती है, मुनि को जो शुद्धता होती है वो इससे भी सूक्ष्म होती है, और वितराग जिनेन्द्र परमात्मा को शुक्ल ध्यान का जो परिणमन होता है वो अत्यंत अतिशय अति अति सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म होता है, वो आगम प्रसिद्ध है। शुक्ल ध्यान के परिणाम बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो आगम में प्रसिद्ध है, वो तो आजकल लोग समझ भी नहीं सकते, तो आगम में लिखा है तो हम थोड़े बहुत अर्थघटन विद्वान लोग कर लेते हैं, बाकी समझ में नहीं आए कि नप्ति परिवर्तन क्रिया क्या है, उसमें ज्ञेय से ज्ञेयांतर, पर्याय से पर्यायांतर, गुण से गुणांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर कैसे परिणमन होता है ज्ञान का, समझ में नहीं आएगा। तो प्रथम वितर्क, वितर्क विचार, सूक्ष्म वितर्क विचार, कई प्रकार के भेद है शुक्ल ज्ञान के, चार नहीं समझ में आएगा क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। अब देखिए कि सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर को तिल पुष मात्र परिग्रह नहीं है, बाहर में कषाय की कोई प्रवृत्ति भी नहीं है, तो भी उसकी वितरागता हमें क्यों नहीं पहचाने, समस्वरण में गए तो भी क्यों नहीं पहचाने। विचारने लायक प्रश्न है। ज्ञानी में हम शंका करते हैं कि ज्ञानी है लेकिन खाते हैं, पीते हैं, गृहस्थी चलाते हैं, व्यापार करते हैं, राजपाट चलाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, सब होता है, अच्छा ज्ञानी क्यों? उनके कषाय प्रवृत्ति देखकर हम शंका करते हैं। मुनि है उनको भी आहार आदि की प्रवृत्ति होती है, परिग्रह नहीं है, फिर भी वो बोलते हैं, उपदेश देते हैं, भगवान की स्तुति वगैरह करते हैं, उतना रागांश उसका भी दिखता है। लेकिन सर्वज्ञ वितरक्तों को तो कुछ नहीं है, वो तो परिपूर्ण ध्यानस अवस्था में निरंतर रहते हैं, आंख भी नहीं खुलते, एक सेकंड के लिए भी आंख नहीं खुलते। भले सो इंद्रो ना रतनमय स्वस्तिक बनता, सो सो इंद्र उनके चरण में नतमस्तक होते हैं, इंद्राणियां नृत्य करती है, नथी एक ने ओ मा तुझ परिणति सन्मुख जरा, इनके सन्मुख नहीं देखते भगवान, आंख उठा के नहीं देखते कि कौन नृत्य करता है, कैसा नृत्य करता है, समोसरण में इनकी भक्ति करते हैं, नृत्य करते हैं। तो भी हमने नहीं पहचाना, इसका कारण क्या? शंका करने की कोई गुंजाइश है कि नहीं है? कि बाहर से कोई पहचान होती नहीं, का मतलब क्या हुआ? बाह्य सकषाय प्रवृत्ति या निष्कषाय प्रवृत्ति या निवृत्ति, जो भी उदय हो, निवृत्ति भी एक उदय है कषाय का अभाव है, उससे अंदर की पहचान नहीं होती और हुई भी नहीं है हमको। भगवान मंदिर में विराजमान है, पहचान हो जाती है क्या वितराग की? नहीं होती है, अनंत काल नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म परिणाम है। ऐसे मुनियों का परिणमन भी, मुनियों में भी शंका करने की गुंजाइश बहुत कम है, भावलिंगी मुनि होते हैं, उसका दीदार ऐसा होता है कि देखते ही शांति का, दर्शन करने वाले को शांति उत्पन्न हो जाए, इतने शांत होते हैं। तो भी उनकी पहचान नहीं हुई, यानी कि पहचान होनी तो बहुत कठिन है, क्योंकि उनको तो सकषाय प्रवृत्ति कुछ होती है और बाह्य दृष्टि जीव के होने से उनका ध्यान बाह्य कषाय प्रवृत्ति पर जाता है, अंतरंग दिशा पर जाता नहीं, तो उनकी पहचान होती नहीं। तो इससे स्थूल परिणाम होता है मुमुक्षु का। तो नीचे वाले मुमुक्षु अपने ऊपर वाले मुमुक्षु को पहचान सकता है, और उत्कृष्ट मुमुक्षु ज्ञानी को पहचान सकता है, और ज्ञानी तो मुनि को और वितराग को पहचान लेता है, क्योंकि उनकी जाति परिणमन की एक हो जाती है, तत्त्व गुण स्थान से वितरागता की स्वसंवेदन की शांति की एक जाति हो जाती है, और उसको पूरा आत्मा की पहचान हो गई है, इसलिए पूरी दशा की भी पहचान हो जाती है। अब कहते हैं कि जगतवासी जीव को, मैंने सामान्य मनुष्य को, राग द्वेष चला गया है उसकी खबर, वितराग की खबर पड़ती नहीं है। और जो महापुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, वो जानते हैं कि ये महात्मा पुरुष में मैंने ये वितराग सर्वज्ञ देव है, उसमें राग द्वेष का अभाव हो गया है, या मुनि होते हैं तो उसका उपशम को भी वो जान लेते हैं। ऐसा लिख करके आपने शंका की कि जैसे महात्मा पुरुष को ज्ञानी पुरुष अथवा दृढ़ मुमुक्षु जीव जानते हैं, ऐसे महात्मा को ज्ञानी पुरुष भी जान लेते और दृढ़ मुमुक्षु भी जान लेते हैं, देखो ये अपेक्षा लिया है, दृढ़ मुमुक्षु की अपेक्षा लिया है, उत्कृष्ट मुमुक्षु की अपेक्षा लिया है, ज्ञानी के साथ लिया उसको। वैसे जगत के जीव को क्यों किस कारण से वो न जाने, आप जरा स्पष्टीकरण दीजिए ना, ये क्यों नहीं जानते हैं? जब ज्ञानी और उत्कृष्ट मुमुक्षु जान लेते हैं तो फिर सामान्य मनुष्य क्यों नहीं जानते, किस कारण से नहीं जानते? और आपने दृष्टांत भी लिखा कि मनुष्यादि प्राणी को जैसे देख करके जगतवासी जीव जानते हैं कि ये मनुष्य है, कुत्ते को कुत्ता जानते हैं, मनुष्य को मनुष्य जानते हैं, बिल्ली को बिल्ली जानता है, मक्खी को मक्खी जानते हैं, सब जानते हैं। तो फिर महात्मा पुरुष को भी जाने कि ये मनुष्यादि है तो और महात्मा पुरुष भी ऐसा ही जानता है, ऐसा सामान्य मनुष्य जानता है, ऐसा ही महात्मा पुरुष जानता है कि ये भी मनुष्य है, ये भी कुत्ता है, ये भी फलाना है। ऐसे पदार्थों के देखने में दोनों का जानना बराबर है, समकक्ष है। ज्ञानी भी मनुष्य को मनुष्य जानता है, तिरियंज को तिरियंज जानता है, सामान्य मनुष्य भी मनुष्य को मनुष्य जानता है, तिरियंज को तिरियंज जानता है। तो इसमें भेद वर्तता है, और वितराग में और राग द्वेष चला गया है, उपशम क्षय हो गया है, उसमें तो भेद, उसमें ऐसा नहीं जानते हैं। तो ऐसा भेद होने में कौन से कारण मुख्य रूप से विचारने योग्य है? ऐसा नहीं होने में जगतवासी जीव को पता नहीं चलता है कि ज्ञानी है या वितराग है। इसका कारण मुख्य रूप से कौन कौन सा कारण है ये आप बताइए, मेरे ये प्रश्न है। इस प्रकार से लिखा उसका समाधान, क्या प्रश्न उठाया है फिर से कि ज्ञानी और वितराग की पहचान क्यों नहीं होती है जगतवासी जीव को? दूसरी दूसरी बात तो जगतवासी जीव बराबर करता है, मैंने जगतवासी जीव अपने अपने विषय में एक्सपर्ट भी होता है, आश्चर्यकारी इनका उपयोग चलता है। जैसे कोई चावल का परख करने वाला होता है, बारीक चावल देख करके बोलेगा कि चावल की क्वालिटी बराबर नहीं है, उसको पकाने से वो बारीक नहीं रहेगा, मोटा हो जाएगा। और कोई मोटा चावल है उसको बोल के कि इसमें पानी इतना अच्छा है, पकाने से बहुत बारीक हो जाएगा, बिना पकाए बोल देगा। चावल की परीक्षा करते कि नहीं करते हैं? तो ऐसे एक्सपर्ट होते हैं चावल की परीक्षा करने वाले कि बिना पकाए उनकी मिठास क्या है, वो पके से कैसा मीठा होगा, कैसा आकृति में होगा, सब बता देगा। तो चाय की परख करने वाले करते कि नहीं? बुजू भाई करते थे, वो चाय पिया नहीं कभी, जिंदगी में चाय नहीं पिया, लेकिन चाय देख करके बोल देवे कि क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ज्ञान का सामर्थ्य है कि नहीं है? तो वहां आप कर सकते हैं, चाय की परख कर सकते हैं, ज्ञानी की वितराग की परख क्यों नहीं कर सकते हैं? समोसरण में गए, भगवान को क्यों नहीं पहचाना? गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव को क्यों नहीं पहचाना? कि चाय का हमें परिचय था लेकिन वितरागता का हमें परिचय नहीं था। चाय की तो परिचय था तो परीक्षा किया, आप चाय के बता, मैं तो नहीं बता सकता ये चाय अच्छी है या अच्छी नहीं है, आपको परिचय है, मुझे परिचय नहीं है। तो परिचय से जो पहचान होती है, ऐसा परिचय नहीं है वो दृढ़ मुमुक्षु को होता है, ज्ञानी को होता है, सामान्य मनुष्य को इस प्रकार का परिचय नहीं होता है। ये परिणाम का अवलोकन करने में, अपने भावों का परिचय करने का प्रयोग है और प्रैक्टिस है। क्या? अपने परिणामों का अवलोकन करना, मैंने क्या कि जो परिणाम का अनुभव होता है उस अनुभव को देखना बार बार और अनुभव का परिचय करना है। उस परिचय से कषाय का परिचय होगा, कषाय की तीव्र मंदता का परिचय होगा, कषाय के रस का परिचय होगा, कषाय होने के पूर्व क्या अभिप्राय से कषाय हुआ उसका भी परिचय होगा, और उसका अभाव होने की सूझ आएगी। इसलिए वो प्रयोग करने लायक है, वो अपने स्वाध्याय में इसका विषय लेते हैं, इसका यही कारण है। तो बिना परिचय पहचान होने वाली नहीं है, क्योंकि ज्ञानी की और वितराग की पहचान इनके भावों से होती है। तब अपने अपने में अंदर में होने वाले भावों के का अपने को परिचय नहीं, पहचान नहीं, तो दूसरे का भावों का पहचान कहाँ से आएगी, खुद का तो ठिकाना नहीं, तो दूसरे की पहचान आने का भी कोई अवसर आएगा
नहीं,
नहीं। ये बात होती है। अब समाधान देते हैं, समाधान मैंने शंका का उत्तर, जिज्ञासा का उत्तर यानी सॉल्यूशन, मनुष्य आदि को जगतवासी जीव जानते हैं, मनुष्य को, पेरियंत को, जगत के जीव जानते, मतलब उसको परिचय है, और देहिक स्वरूप से वो जानते हैं, वो देहिक स्वरूप से तथा दैहिक चेष्टा से जानते हैं। अपना देह का भी परिचय है और अपने देह की चेष्टा का भी परिचय है, दूसरे का शरीर का भी परिचय है और उसकी चेष्टा का भी परिचय है, तो उससे जानते हैं। एक दूसरे की मुद्रा में तथा आकृति में तथा इंद्रियों में जो भेद मैंने तफावत है कि मनुष्य को ऐसा होता है, तिरियंज को ऐसा होता है, मनुष्य को इतने कान होते हैं, गधे को इतने बड़े होते हैं, मनुष्य को ऐसे पैर होते हैं, जबकि मनुष्य को हाथ होते हैं तो तिरियंज को हाथ नहीं होते हैं, पैर ही होते हैं, कोई पैर बिना के भी होते हैं जलचर प्राणी, तो उनके आकृति इंद्रियों वगैरह से जानते हैं। वह चक्षुवादी इंद्रियों से किसे जानते हैं, चक्षुवादी इंद्रियों से जगतवासी जीव जान सकते हैं, चक्षु इंद्रिय से जानना होता है। क्योंकि उस विषय के उसके अनुभव का विषय है, क्या यह इनका अनुभव का विषय है, जो अनुभव का विषय है वो बता देगा, जिस विषय में अनुभव नहीं है, अनजाने हैं, वो बता सकते
नहीं
है। सीधी साधी बात, प्रिंसिपल ही, सिद्धांतिक बात हो आई कि जिसका जिस लाइन में अनुभव है वो बात वो बता सकेगा। जैसे शरीर विज्ञान के लिए तबीबी विज्ञान है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ गड़बड़ होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कौन, क्योंकि उसको उसके इस ज्ञान का अनुभव है, उसने उसका प्रैक्टिस किया है। किसका, छोटे बच्चे का, तो कषाय क्या हमको अनुभव है, तो कषाय परिणाम और कषाय परिणाम के निमित्त से उत्पन्न होने वाली शरीर की चेष्टा को हम पहचानते हैं, तो बच्चे की भी चेष्टा जो है उनकी इच्छा का अनुसार होगी ना, तो उनको हम पहचान लेंगे कि वो ऐसा कहना चाहता है, वो ऐसा कुछ ऐसा भाव व्यक्त करता है। जैसे कोई बच्चा हाथ इधर जाता है तो अपनों को पता चलेगा कि उनको यहाँ कुछ हुआ है, उसका हाथ बार बार यहाँ क्यों जाता है, उसको खुजली आती है या कुछ होता है या माथे में कुछ जूं पड़ी है, कुछ भी है, बोल नहीं सकता है, लेकिन हम पहचान लेते कि नहीं पहचान, क्योंकि उस भाव का हमें परिचय है, यानी कि ज्ञान भाव का परिचय नहीं है तो नहीं पहचान सकते हैं, सीधी साधी बात है। वो तो कहा क्योंकि यह उसका अनुभव का विषय है, परंतु ज्ञान दशा अथवा वितराग दशा, क्या ज्ञान दशा को हो या वितराग दशा को है, वह मुख्य रूप से देहिक स्वरूप और देहिक चेष्टा का विषय नहीं है, मुख्य रूप से, गौण रूप से है, मुख्य रूप से नहीं है, स्थूल रूप से नहीं है, सूक्ष्म रूप से है लेकिन स्थूल रूप से नहीं है। तो क्या है कि ज्ञान दशा और वितराग दशा तो अंतरात्म गुण है। कैसा शब्द प्रयोग किया है, आत्मा के अंतर का गुण का ये दशा है, अंतरात्म गुण प्रकट हुआ, आत्मा के अंदर के गुण जो प्रकट हुआ उसको ज्ञान दशा और वितराग दशा कहते हैं, उसको आत्म दशा कहते हैं। वो शरीर का गुण नहीं है कि शरीर से जाना जाए कि भाई ऐसा है कि जो ज्ञानी है उसका शरीर ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ज्ञानी स्वरूप हो सकता है, कुरूप नहीं हो सकता, ऐसा कोई सिद्धांत है क्या?
नहीं है।
कि नहीं, ऐसा नहीं सिद्धांत है। कुरूप हो, काना हो, कुबड़ा हो, कुछ भी हो, ज्ञान दशा हो सकती है। तो शरीर का, शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा भी नहीं है, कोई ज्ञानी ऐसा खाते होंगे या ज्ञानी रोटी नहीं खाते होंगे? रोटी की जगह क्या खाते होंगे? दूसरे मनुष्य भी रोटी खाते हैं और ज्ञानी भी
रोटी खाते हैं।
रोटी तो रोटी की जगह रोटी नहीं खावे वो ज्ञानी है क्या?
नहीं।
बोले चलो हमको ज्ञान हो आज से हम रोटी नहीं खाएंगे, ऐसा लेना है क्या? हाँ, ऐसी कोई बात ज्ञानी में नहीं है। फिर भी इस कारण से मुमुक्षुता नहीं है। कोई बाहर का खान पीन का फेरफार करे इसलिए मुमुक्षुता है या इसलिए ज्ञान दशा है, ऐसा
नहीं है।
नहीं है, मुमुक्षु वैरागी होता है। चलो मुमुक्षु को वैराग होता है। हा? तो क्या अन्य मत में वैरागी नहीं होता है क्या? अनियमत में भी वैरागी लोग होते हैं, और कबीर पंथी में खास वैरागी होते हैं। इसलिए कबीर पंथी साधु आया तो कृपालु देव ने बोला कि वैराग देखने के लिए वहां जाना, देखना कि कैसा वैराग है इसका, देख लेना जरा। अम्बालाल भाई वगैरह को भेज दिया, यही कारण है। तो वैराग्य है इसलिए मुमुक्षु है, सो भी नहीं है। यथार्थता में कहीं और प्रकार भी देखना पड़ता है, अकेले वैराग्य से यथार्थता नहीं देखी जाती और वैराग्य नहीं होने से भी यथार्थता नहीं देखी जाती। वैराग्य नहीं दिखने से, वैराग्य तो अंदर बन के परिणाम की चीज होती है, बाहर कभी आता है कभी बाहर नहीं भी आता है। जैसे कोई पूर्व पुण्य के प्रारब्ध से बहुत से परिग्रह के बीच में कोई मुमुक्षु रहता है, क्या मकान भी बड़ा हो, इनके सब प्रकार के जो भी पंचेंद्रिय के विषय के साधन भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो उसको वैराग हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या गिने हम, क्या गिने? तो इसको रस है तो वैराग्य नहीं है और निरसता है तो वैराग्य है, तो यहां से नापा जाता है, इनके बाह्य संयोग से नापा जाता
नहीं है।
नहीं है, ज्ञानी वैरागी होते हैं, जैसे मुमुक्षु वैरागी होते हैं तो ज्ञानी भी वैरागी होते हैं। नियम से क्या
नियम से वैरागी होते
हैं, समय सार का कलश है निर्जराधिकार का, नियम से वैराग्य होता है उसको अंतर परिणाम में। वो ज्ञानी इंद्र होते हैं, इंद्र ज्ञानी होते हैं कि नहीं होते? कि स्वधर्म इंद्र नियम से ज्ञानी होते हैं, शारीरिक का विषय नहीं है, अंतरात्म गुण है और अंतरात्मपना बाह्य जीवों का अनुभव का विषय नहीं होने से अंतरात्मपना वो बाह्य जीवों का, अभी क्या ना वो जगतवासी जीव को क्या बोला इधर, वो बाह्य जीव है, ज्ञानी अंतरात्मा है और जगत के जीव बहिरात्मा है तो उसको बाह्य जीव बोलते हैं। जिसकी बाह्य दृष्टि है वो बाह्य जीव है, जिसकी अंतर्दृष्टि है वो अंतर्जीव है। बाह्य जीव और अंतर्जीव दो भेद निकाल दिया। अंतरात्मपना बाह्य जीवों का अनुभव का विषय न होने से तथा रूप अनुमान भी प्रवर्ते ऐसी जगतवासी जीवों को बहुत करके संस्कार नहीं होने से बहुभाग ज्ञानी और वितराग को वो पहचान सकते हैं
नहीं है।
क्या लिखा कि एक तो अपना अनुभव नहीं है और बिना अनुभव वो अनुमान से पकड़ सके ऐसे भी ऐसे जीव को बहुभाग जीवों की योग्यता नहीं है। कुछ एक जीव की योग्यता होती है तो वो उस लाइन में चढ़ जाता है, फिर उसकी लाइन पूरी बदल जाती है। बाकी बहुभाग जीवों को तो ये योग्यता अनुमान करने की भी नहीं है कि वो अनुमान से भी पकड़ सके कि ज्ञानी है। अपन एक प्रश्न उठाएं, गुरुदेव ज्ञानी थे हम मानते हैं और इसलिए गुरुदेव का जो स्टैच्यू है प्रतिकृति है विराजमान बहुमान से करेंगे अपन। तो गुरुदेव ज्ञानी क्यों थे ये हमारा प्रश्न है। क्या क्यों ज्ञानी थे? उनके शरीर प्रभावशाली था, तेजस्वी शरीर था, इसलिए वो ज्ञानी थे?
नहीं।
दिखने में ही महापुरुष दिखते हैं, देखो है? प्रभावशाली दिखते कि नहीं दिखते हैं? है? इसलिए वो ज्ञानी थे? अन्य मत में ऐसे नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अब वो त्यागी थे, कुर्ता टोपी नहीं पहनते थे, इसलिए ज्ञानी थे? अन्य मत में भी त्यागी होते हैं। प्रवचन बहुत बढ़िया देते थे। क्या
प्रवचन?
गुरुदेव की वाणी जो है आज भी टेप में सुनने में आती है, बहुत अच्छे प्रवचन। इसलिए वो ज्ञानी थे?
नहीं।
इससे भी अच्छा ऑरेटर मिल सकता है दुनिया में? वो आचार्य रजनीश था ना, क्लास वन ऑरेटर था, फाइन ऑरेटर ही, एकदम चक्कर खा के लोग पढ़ते थे इनके चरण में। इससे भी वो ज्ञानी, फिर ज्ञानी होने का कारण क्या है? तो वो बात जब तक पहचानने में नहीं आती है वहां तक हमारी समझ में वो ज्ञान क्या है, वितरागता क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा के गुण क्या है, स्वभाव क्या है, वो बात समझ में आने वाली चाहे हम कुछ भी करें। सारी जिंदगी गुरुदेव को सुनते रहे और अभी भी टेप सुनते रहेंगे जहां तक हमको विश्वास है कि ज्ञानी है, ऐसा विश्वास तो है, अविश्वास नहीं है, वो बात नहीं है कि हमको अविश्वास, लेकिन पहचान
नहीं
होती। पहचान अलग चीज होती है, विश्वास अलग चीज होती है। बहुत प्रथम पत्र में बहुत मुद्दे की बात कुछ किया है, इस पत्र में कृपालु देव ने बहुत मुद्दे की बात किया है। क्या नहीं, वो तो बात स्पष्ट हो गई। वो तो बैंसरी के पास वो प्रश्न चला था, प्राण बहन ने चलाया था ना, चलो वो जब थे तब तो हमारे पहचान नहीं हुई, लेकिन अब गुरुदेव की वाणी सुनते सुनते तो गुरुदेव की पहचान कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। और बैंसरे को भक्ति भी बहुत थी गुरुदेव के प्रति, तो हाँ भर देंगे, लेकिन हाँ भरी
नहीं।
कि ऐसे कैसे सुनते सुनते पहचान होती
नहीं।
नहीं है। और तो फिर और प्रश्न चला कि उसमें कैसेट में तो वाणी सुनने में आती है, गुरुदेव तो दिखने में नहीं आता है, और प्रत्यक्ष में तो दिखने में आता है, तो इसे वीडियो कैसेट में तो दिखने में भी आता है, हाव-भाव भी आता है, वाणी जैसे प्रत्यक्ष हो ऐसा ही दिखता है, लेकिन प्रत्यक्ष है नहीं वहां, वहां टीवी का पर्दा है, गुरुदेव
नहीं है,
नहीं है। तो बोले कि इससे भी पहचान नहीं होती है, पहचान होने में साक्षात चाहिए। हाँ आत्मधर्म में से विश्वास आया था, पहचान तो सोनगढ़ आए तब हुई। अगर 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 जो आत्मधर्म में से पहचान हो जाती तो क्यों फिर सोनगढ़ आए, पहचान तो हो गई, बात हो गया, काम पहचान का काम तो हो गया। तो ज्ञानी को पहचान होता है तो फिर आत्मा की पहचान होती है, और फिर आत्मा की पहचान होती है तो अनुभव हो जाता है, तो फिर तो आने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन उनको तो जल्दी से जल्दी आने की जरूरत महसूस हुई थी। राजू भाई तो ऐसे परोक्ष में कभी किसी व्यक्ति की पहचान आती
नहीं है,
परोक्ष में नहीं आती है। जो स्वभाव का संस्कार लेकर जो जीव आता है उनको पहले प्रत्यक्ष मिल गए हैं, पर उसने वो पहचान का काम वहां कर लिया है, तो काम करके आए थे, वो बात को हमको पता नहीं है, तो हम समझते कि देखो गुरुदेव को समय सार से ज्ञान हुआ तो हमको भी समय सार से ज्ञान हो सकता है, कि गलत बात है, हमको समय सार से ज्ञान होना होता तो गुरुदेव को हो गया था, हमको हो जाना चाहिए था। हाँ तभी अनुभव हो गया, इसका मतलब ये है कि वो जो काम करके आए थे वो काम हमने नहीं किया, ये काम आगे का बाकी है, आगे का काम हम छोड़ देते हैं, पीछे का काम पहले करते हैं, तो क्रम विपर्यास होता है। रोटी बनाना है तो उसको बेलन घुमाए बिना तो आटे का को लगा दो तवा पे, हाँ रोटी बन जाएगी क्या, कैसे बनेगी? हाँ 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 आगे चलो। प्रश्न એટલો છે કે ઓળખાણ માટે પ્રત્યક્ષ પરિચય જોઈએ, પણ એવું નથી કે એસા નહીં હૈ કે જિસકો પ્રત્યક્ષ મિલે ઉસકો પહેચાન હોઈ જાવે। વો તો બહુત સે આગે સે 30-30 સાલ સે બેઠે થે વહાં, વો 2002 મેં આયે તો 30 સાલ તો ઉસ વક્ત તો 30 સાલ નહીં હુઆ થા, ઉસ તો 10 સાલ 12 સાલ હુઆ થા ગુરુદેવ કો વહાં પધારને મેં, 10 સાલ વાલે કો નહીં પહેચાન હુએ, ઓર 10 ઘંટા ભી નહીં હુઆ થા, એક હી ઘંટે મેં પહેચાન કિયા, પહેલે ઘંટે મેં પહેચાન કિયા, દૂસરા ઘંટા ભી નહીં। યોગ્યતા કા સવાલ હૈ, ઓર ઇસકી તો ચર્ચા કરેંગે, યે બાત કી તો ચર્ચા કરની હૈ કૃપાલુ દેવ કો, ઇસલિયે વો બાત કર રહે હૈ। ગુરુદેવ ઓળખાણ, હા તો એમાં શું છે કે પહેલા તો ગુરુદેવના વિષયમાં એટલો ખ્યાલ નહોતો પડતો, હવે આપણે ગુરુદેવના વિષયમાં ચર્ચા કરીએ છીએ એટલે એમ કે ઠીક ચાલો વધારે વિશ્વાસ આવે છે। એમાં શું થાય છે, દો બાત અલગ અલગ હૈ, વિશ્વાસ આના એક બાત હૈ, પહેચાન હોના એક દૂસરી બાત હૈ। विश्वास आना में बौद्धिक स्तर से हमको लगता है कि ये ज्ञानी है, और पहचान होने में फीलिंग स्टेज से हमको लगता है कि वो ज्ञानी है, तो बौद्धिक स्तर पर तो हम लोग आगे उन्नान में जाइए बौद्धिक स्तर से जो समाधान होता है हर बात का, कोई भी प्रश्न हम गुरुदेव को पूछते थे, अभी भी गुरुदेव की चर्चा करते हैं कि भाई ये कोई प्रश्न उठा तो हम कहेंगे कि भाई देखो गुरुदेव ने ऐसा उत्तर दिया है इस जगह ये प्रवचन में, इस शास्त्र के इस गाथा के प्रवचन में वो बात उन्होंने की है, देखो गुरुदेव से स्पष्टीकरण आ गया है, हमको विश्वास आता है। वो विश्वास आना बौद्धिक स्तर में एक बात है, वो पहचान होना वो दूसरी बात है। देखो सोना है, सोने का हम विश्वास करके सोने से लेते हैं ना बौद्धिक स्तर पे, कि इसका घाट है, कलर है, बेचने वाला है, कौन है, कैसा है, क्या है, सब बौद्धिक स्तर से हम कर लेते हैं, विश्वास करके पैसा दे देते हैं कि भी देखो कि 50,000 का जेवर लिया, आभूषण लिया, ये ले लो 50,000 रुपया आपका, तो इतनी सी चीज का 50,000 रुपया हम दे देते हैं, देते क्या नहीं देते, दस तोले का एक आभूषण है 50,000 दे देंगे, लेकिन हमको सोने की पहचान है क्या कि ये तो जो कसौटी पे घिस करके पहचानते हैं उनको ही सोने की पहचान है। हम सोने को सोना जानता है, जानते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन पहचानते नहीं है, पहचान की चीज ही अलग है। ये साबित करता है कि बिना पहचान वाले की परिस्थिति अलग डेवलप हो ही जाएगी, कभी भी बिगड़ सकती है। जैसे हम 50,000 दे के लाए, फिर हमारे कोई दूसरे संबंधी आए जो सोना के पहचान वाले हैं, उनको बताएंगे अरे आप ठीक आ गए, आजकल हमने 50,000 का ये चीज लिया है, बताइए बात तो बराबर है, हम तो विश्वास करके लिया है, तो थोड़ा जेब में से कसौटी निकाल करके मुंह बिगाड़ देगा, जो मुंह बिगाड़ा देखिए माफ करिए मेरा नाम मत देना, मैंने बताया नहीं बोलना, लेकिन इसमें गड़बड़ है, आप तो जानते नहीं, आपके परिणाम विचलित हो जाएंगे, शंका हो जाएगी कि आदमी ने हमारे साथ धोखा कर दिया। ऐसे बिना पहचान हमको कहीं भी ज्ञानी में अविश्वास आ जाएगा। अच्छा है ऐसा कोई गुरुदेव के साथ व्यवहार का प्रसंग किसी को नहीं था, क्योंकि भाई गुरुदेव ने गुस्सा कर लिया हो अपने पर, और भी कोई हमारे कसूर नहीं हो फिर भी गुस्सा कर लिया हो तो ऐसे ज्ञानी होते हैं, अन्याय करते हैं, हमारा कोई कसूर नहीं था, हम बिल्कुल निर्दोष थे, फिर भी हमारे पर आरोप लगा करके हमको ऐसा बोल दिया, गुस्सा कर लिया, ऐसे ज्ञानी होते, शंका हो ही जाएगी। ज्ञानी तो शांत होते हैं, ज्ञानी गुस्सा करते हैं कि ज्ञानी शांत होते हैं, कैसे ज्ञानी को पहचानेंगे, गुस्सा करे वो ज्ञानी नहीं, चलो शंका, अन्याय करे वो ज्ञानी नहीं, न्याय नीति तो होती है कि नहीं होती है, सज्जन को भी होती है, ज्ञानी को तो होती है, होती है ये गड़बड़ होने वाली पहचान नहीं है, तो विश्वास अविश्वास में कभी पलटेगा। जैसे गुरुदेव ने कुछ ऐसा समझाया, हाँ कुछ दूसरे विद्वान ऐसे भी हुए कि नहीं गुरुदेव ने ऐसा समझाया, ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा है, और उनकी दलील कोई ठोस लगी अपने को, और कईयों को लगती भी है, सही बात है, गुरुदेव की बात से तो ये बात बराबर है, तो गुरुदेव में विश्वास था वो कहां चला गया, चला गया कि नहीं चला गया, क्यों चला गया, तो हमको पहचान नहीं थी इसलिए चला गया, ये सब बात बनने वाली है, पहचान नहीं है तो जो विश्वास है वो विश्वास से हमें भरोसा में रह करके, विश्वास के विश्वास में रहना नहीं है,
तो
वो बौद्धिक स्तर का है विषय, ये बौद्धिक वो लेवल बौद्धिक लेवल है, अंदर से प्रतीति किस आधार से आए, इसका आधार क्या है, हमको ये है तो अनुभव की बात अलग होगी, अनुभव साक्षी पूरे तो पहचान होगी तो विश्वास की बात नहीं रही, अनुभव फीलिंग स्टेज का विषय है। मौजूद है उनके शब्द देह तो मौजूद है, लेकिन पहचान होने में अनादि मिथ्या दृष्टि को शब्द देह से काम होता नहीं, प्रतिष्ठा ही है। वो तो बेंच ने उत्तर दे दिया है, अच्छा ऐसा नहीं बताया ना, बोला बहुत पूछा, फिर करके वो प्रश्न पूछा, हाँ भरे नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे पहचान नहीं होता, हो नहीं सकता। उसको क्या है कि इसके जो विश्वास आता है अंतर से कोई असमाधान की गुत्थियां है, उसका परिवर्तन समाधान से हो करके वो हल्का सा हो जाता है, और भविष्य में ऐसा असमाधान उसको अंदर में से आएगा भी नहीं, तब तो विश्वास भी का स्थिर यथार्थ है। इसके पहले ऊपर ऊपर का विश्वास है वो भी गड़बड़ वाली चीज है, विश्वास में भी दो स्तर है, तो ऐसा होता है वो भी आगे बढ़ करके अपनी योग्यता को बढ़ा करके पहचान करेगा, कुछ अनुभव से मिलान करके, वो बात तो कहेंगे, उसकी तो चर्चा करेंगे कि वो कैसे अनुभव से मिलान करता है, अनुभव से मिलान करना इतनी बात होगी, लेकिन अनुभव से कैसे मिलान करता है, तो खुद प्रयोग करता है तो उसमें अनुभव से मिलान होता है, प्रयोग नहीं करता है उसको अनुभव का मिलान होता नहीं है, वो चर्चा करेंगे। हाँ पात्रता चाहिए, पात्रता बिना तो कोई प्रयोग का पुरुषार्थ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रयोग में पुरुषार्थ चाहिए, प्रयोग विचार दशा से, विचार दशा अपुरुषार्थ से होती है, पुरुषार्थ उल्टा चले और विचार दशा हो सकती है, आत्मज्ञान स्वरूप है और पुरुषार्थ उल्टा चलता हूँ, मैं ज्ञायक हूँ लेकिन पुरुषार्थ उल्टा चलता हूँ, ये बन सकता है विचार दशा में, विकल्प चल सकता है, प्रयोग में ऐसा नहीं चलता है, प्रयोग में पुरुषार्थ जुड़ता है तब प्रयोग होता है, उनको पहचान होती है, वो बात करेंगे इधर, थोड़ा विस्तार से लेने योग्य विषय है, तो यहाँ से थोड़ा अपन लेंगे कि ये जो देहिक चेष्टा का विषय नहीं है, अंतरात्म गुण है, और वो अंतरात्म गुण बाह्य जीवों का विषय भी अनुभव का नहीं है, क्योंकि उसको प्रयोग नहीं है और अनुमान कर सके ऐसी योग्यता जब तक नहीं है, ऐसा बहुभाग जीव को संस्कार यानी योग्यता नहीं है तो पहचान कर सकता नहीं है। कोई जीव, अब कोई जीव पहचान कर सकता है, बहुभाग जीव पहचान नहीं कर सकता है, कोई जीव योग्यता वाला है तो पहचान कर सकता है, वो कोई जीव कैसा होता है उसकी चर्चा यहाँ चलेगी, वो करेंगे।
परम कृपा कान गुरुदेव जयंता।